ओम शांति। कैसे हैं सभी? हम कहते हैं कि ये आपका घर है, तो जैसे हमारी बहनें जब कहती हैं कि मायके जा रही हैं, तो बहुत हक सा फील होता है। बिल्कुल ऐसे ही ये आपके माता पिता का घर है, तो माता पिता के घर में बच्चे बिल्कुल निश्चिंत, कन्वीनियंट, टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती, इनफैक्ट दूर हो जाती है। तो जब ऐसी फीलिंग आती है कि ये मेरे माता पिता का घर है, तो मन हल्का हो जाता है। तो ये जो फीलिंग है, ये सदा बनी रहे। जब तक यहां है, केवल तब तक नहीं, सदा बनी रहे। उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने, क्योंकि माँ बाप बच्चों से मेहनत नहीं कराते हैं। वो चाहते हैं बच्चे मेहनत से मुक्त हो जाएं। मुझे याद है, जब हम छोटे थे तो हमारे पापा टेबल्स याद कराते थे, तो उसके छोटे छोटे ट्रिक्स बता देते थे ताकि याद करने में आसानी हो जाए। संस्कृत के श्लोक याद कराते थे तो याद करना आसान हो जाए, तो उसके लिए भी कुछ उनके तरीके थे। तो माता पिता बच्चे को इजी कराना चाहते हैं। यहां भी जो ईश्वर को याद करने की विधि है, उससे प्राप्त करना, यानी जिसे हम सिद्धि कहते हैं, वो कितना सहज है, वो तरीके सिखाए जाते हैं। तो इसीलिए आज के इस सेशन में हम उस परम पिता परमात्मा को न केवल जानेंगे, न केवल पहचानेंगे, परंतु उससे हम कैसे पाएं, कैसे सदाकाल के लिए उसका बन जाएं, कैसे उससे सर्व प्राप्तियां कर पाएं, वो तरीका भी समझेंगे। क्योंकि अब तक तुम स्कूल में जाते थे तो प्रेयर्स में गाते थे, प्रेयर से इनफैक्ट पहले कौन सा श्लोक गाते थे, याद होगा किसी को? और कोई? प्रेयर्स में तो नहीं गाते थे स्कूल में, मुझे जहां तक याद है, केवी में पढ़ी हूं, तो हमारे प्रेयर से पहले श्लोक गाते थे, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। उस समय समझ नहीं आता था, बस जैसे बोलते थे वैसे बोल देते थे। अब समझ आता है कि वो भगवान, जिसे ज्ञान सूर्य कहते हैं, वो कैसे हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये कंट्रास्ट, संसार में कोई शक्ति नहीं है जो कर सके। हमारे जीवन के सब दुख खत्म हो जाएं, सुख आने लग जाएं, जीवन से अज्ञान अंधकार सदाकाल के लिए खत्म हो जाए, मृत्यु का डर भी समाप्त हो जाए, ये कार्य केवल ज्ञान सूर्य कर सकता है, प्यार का सागर कर सकता है, कालों का काल महाकाल कर सकता है। और उसके करने की विधि क्या है, वो आज आप सबको सिखाएंगे। परंतु उससे पहले ये समझें, भगवान है कौन? आइए थोड़ी देर के लिए सबसे पहले हम तीन बारी ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। क्यों? कारण है, क्योंकि ओम अर्थात मैं आत्मा। इस समय जब हम परमात्मा को जानने बैठे हैं, जैसे बच्चे अपने माँ बाप के पास बैठते हैं, तो उस समय कोई पोस्ट नहीं होती, पोजीशन नहीं होती, उम्र भी नहीं होती, देह की सारी हदें खत्म हो जाती हैं। हम जो हैं जैसे हैं वैसे बैठते हैं, जो हम दिखाते हैं, जो हम बनकर आते हैं वो नहीं है, जो हम असली में हैं। तो ये सारा जो बाहर का दिखावा है इसको भूल जाओ, बस वो बन जाते हैं जो दिखाई नहीं देती, वो चेतन शक्ति आत्मा, अपने उस सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना और उस स्थिति के अंदर रहकर उसकी स्मृति में आकर उन गुणों को, उन शक्तियों को अपने जीवन में फैलाना कि मैं अगर आत्मा हूं तो आत्मा कैसी है? शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाना, उस स्थिति में रहकर बैठ जाना, बस अभी और कुछ नहीं। जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिचुएशंस हैं, कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है, वो सब बातें भूल जाओ। इस समय मैं केवल परमात्मा की संतान आत्मा, चारों तरफ से बुद्धि हटाएंगे, यहां अपनी स्थिति में, अपनी स्मृति में टिक जाएंगे, मेरे साथ तीन बार बोलेंगे, बोलते बोलते स्वरूप में टिकेंगे। जैसे से ओम बोले, सारा ध्यान चारों तरफ से हटे, यहां शांति बोलेंगे, अंदर की शांति सारी बॉडी में और चारों ओर फैलेगी। ठीक, तीन बार करेंगे अभ्यास। हमारे पुराणों में लिखा है कि परमात्मा शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रचना ओम की ध्वनि से की थी। आप सोचो कितनी पावरफुल है ये ध्वनि। अगर वो सृष्टि की रचना कर सकती है तो हमारे जीवन को बदल नहीं सकती ये स्मृति, ये आइडेंटिटी जो चेंज हो गई हमारी, इतने बड़े शरीर से इतनी छोटी आत्मा, इतने बड़े विस्तार से एक सार। विस्तार को समझना कठिन हो सकता है, जीवन को समझना कठिन हो सकता है, पर खुद को समझना, जानना, पहचानना सरल है। बस सरल चित्त होना चाहिए, अंदर की भावनाएं सत्य होनी चाहिए, बाकी सब सहज है। इसलिए परमात्मा को जानने की विधि तो हम समझेंगे, पर आपको एक टिप देती हूं। संसार में कोई भी ज्ञान आपको समझना है यथार्थ, रुकावट आ रही है। जैसे आप कई बार कहते हो ना कि भगवान को याद करने बैठते हैं, दुनिया की सारी बातें याद आती है, भगवान ही याद नहीं आते हैं। ये जितने भी प्रॉब्लम्स आती है ना, उसके दो कारण हैं। चेक करेंगे, चेंज करेंगे, निवारण हो जाएगा। भगवान को कहते हैं वो सत्य है। अगर हम असत्य स्वरूप में बैठे हैं, मन में छल है, कपट है, किसी की बातें हैं, किसी के बारे में आपके मन में वहम है या अहम है, तो याद नहीं आएगी। क्योंकि कहते सच्चे दिल पर साहेब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। कईयों की इच्छा पूरी हो जाती है, किसी की नहीं होती है। आधार क्या है? नियत। कहीं खोट होती है, स्वार्थ होता है, मुझे मिल जाए इसका नहीं। जब ये दोनों चीजें आपकी पूर्ण हो जाती हैं, आपका सब काम अपने आप होने लग जाते हैं। नहीं हो रहे, रुकावट आ रही है, तो देखो दिल सच्चा है, नियत साफ है। यहां भी अगर आप सच्चे दिल से बैठो ना, सब बातों को भुलाकर नियत को साफ करके बिना किसी छल कपट के बैठो, तो यहां बैठे बैठे भी जो आप सोचोगे वो आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। बस अपने अंदर की चेकिंग करो। जैसे नॉइस होती है ना, तो आवाज भी क्लियर सुनाई नहीं देती, वैसे ही ये मेरे अंदर की नॉइस है जो हमारे अंदर खोट आ गई है, जो हमारे मन की इच्छाओं को पूर्ण होने नहीं देती। तो इसीलिए हर चीज जो पाना चाहते हो उसकी ये टिप है, चेक करोगे चेंज हो जाएगा और आप जो चाहते हो वो होने लग जाएगा। या तो डर है किसी बात का, या तो वहम है किसी बात का, या तो अहम आ गया है जीवन में, जो हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करने नहीं देता है। आज का टॉपिक हमारा, उस ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, उस ईश्वर को कैसे जानें, कौन है वो भगवान जिसे हमने कई बार पुकारा आरतियों में, क्या कहा? तुमी हो माता, तुमी हो बंधु, एंड में क्या कहा? तुम मेरे सब कुछ हो, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। रोज पुकारा, कई बार पुकारा, सबने पुकारा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने गॉड फादर, किसी ने परम शिक्षक के रूप में याद किया, किसी ने सतगुरु के रूप में याद किया, किसी ने सोमवार के सोमवार याद किया, किसी ने मंगल के मंगल याद किया, किसी ने मुसीबत के समय याद किया, पर याद जरूर किया है, सबने याद किया है। कौन है वो जिसको हमने पुकारा है, जानते हैं? अभी मेरे सामने इतने सारे भाई बहने बैठे हैं, मैं पूछती हूं भगवान कौन है, किस भगवान को आपने याद किया? ऐसा तो नहीं है किसी ने श्री राम के सामने बोला, किसी ने श्री कृष्ण के सामने बोला, किसी ने माता रानी के सामने बोला, किसी ने गुरुद्वारे में जाके बोला, किसी ने मस्जिद में जाके बोला, किसी ने चर्च में जाकर बोला। बहुत सारे देवी देवताएं हैं भारत के, क्या कहते हैं, कितने देवी देवताएं हैं? 33 करोड़ देवी देवताएं, हर कुल की देवी देवताएं हैं, कितनों को याद किया ना? मुझे याद है हम मंदिर में जाते थे, इतने सारे देवी देवताएं होते थे, अभी कंफ्यूजन हो जाती थी किसके पास पहले जाएं, है ना? और कई बार ये हो जाता है, कई लोग कहते हैं अच्छा वो बड़ा है, नहीं ये बड़ा है, अभी उस बड़े के पास पहले जाना चाहिए ना, और अगर बड़े के पास नहीं गए छोटे के पास चले गए तो बड़े नाराज ही ना हो जाए। भगवान के मंदिर में जाने में बड़ी कंफ्यूजन होने लगी, पर फिर भी जाते तो थे ना, परंतु कंफ्यूजन थी कि भगवान है कौन, कौन है भगवान? फिर एक और बात कहते, सबका मालिक एक, गॉड इज वन। अब यहां तो मैनी हो गए, कंफ्यूजन हो जाती थी, अभी भी होगी, है कि नहीं है? कल ही मैं एक भाई से मिली, उसने कहा कि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता हूं। कंफ्यूजन जब हो जाती है, किसी चीज के अंदर क्लैरिटी नहीं होती ना, तो हम या तो उसको छोड़ देते हैं या फॉर्मेलिटी से कर रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना, बस दिखावे के लिए कर लेते हैं, फिर प्राप्ति भी दिखावे वाली होती है। जैसे कोई रिलेशन होता है, किसी के साथ संबंध होता है, दिखावे का करोगे वो भी फॉर्मेलिटी करेगा आपके साथ, दिल से करोगे तो वो भी दिल से करेगा। तो हम भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती और बस फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं, तो प्राप्ति नहीं होती है। थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली में थी, एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया। तो कहता है, सच्ची घटना है, ये कथा नहीं है, कहते हम जब छोटे थे ना, तो मेरी मम्मी मुझे गुरुद्वारे मंदिर ले जाती थी और कहती थी कि बच्चे मंदिर गुरुद्वारे जय करो, प्रणाम करो। रेगुलर जाते थे मम्मी के साथ। फिर बड़ा हुआ तो भी मम्मी ने कहा एग्जाम के दिन तो याद कर लिया करो, मैं जाता था, सुबह भी जय करके चला जाता था। फिर बाद में बड़ा हो गया, जॉब लग गई, ट्रांसफर हो गई यूएसए में, तो मम्मी का फोन आता था कि बेटे भगवान को याद करते हो, उसका शुक्रिया करते हो, उसने तुम्हें कितना कुछ दिया है। तो मैं भी कहता था हाँ हाँ मम्मी याद करता हूँ। तो माँ कहती थी कि उसके नाम का ना कुछ डाल दिया करो वहां मंदिर में। तो मैं भी कहता था कि हाँ मम्मी मैं भी डाल दूंगा, हमें मंथली तनख्वाह मिलती है, उसको मैं इकट्ठा डाल दूंगा। उसने अपनी बात बताई तो उसने बताया कि कुछ समय के बाद लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसी बीमारी लग गई कि मैं ना उठ भी नहीं पाता था, बैठ भी नहीं पाता था। उसको बॉडी की एक ऐसे ऑर्गन में प्रॉब्लम हो गई, ना उठा जाता था ना बैठा जाता था। तो उसने कहा कि ऐसी प्रॉब्लम के साथ मैं अपने जीवन के अंदर जॉब तो कर रहा था, पर एक टेंशन थी, एक दर्द था, एक दुख था कि क्या हो रहा है मेरे जिंदगी के अंदर, ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चीज प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, बीमारी इतनी गहरी हो गई कि अब उसका मन कहीं लगे ही ना, काम भी करने का मन ना करे, शारीरिक रोग इतना जबरदस्त हो गया। उसको मैरिज करनी थी, उसे लगा शायद मेरी मैरिज भी नहीं होगी, फिर भी उसे एक लड़की मिली जो उसकी बीमारी के साथ भी शादी करने को तैयार हो गई, मैरिज भी हो गई, और कुछ समय के बाद डिवोर्स भी हो गया, जो कि उस प्रॉब्लम के कारण वो बहन उसके साथ रह नहीं पाई, उसकी जो वाइफ है। कहते उसके बाद मैं इतना टूट गया, डिप्रेशन में आ गया, और मेरा मन करता था कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं, ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है। और उसने कई बार ट्राई भी किया, पर कहता है कि मेरे को मम्मी पापा का ख्याल आता था तो मैं रुक जाता था। कहते फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझे फोन किया और कहा कि बेटे भगवान को याद करते हो। तो कहते उस दिन मैंने सच्चे दिल से, बिल्कुल साफ दिल से उसको याद किया, उसका शुक्रिया अदा किया, और मैं उस दिन सच्चे दिल से मंदिर गया, और जैसे मम्मा मुझे याद करने को कहती थी वैसे किया। कहते वो दिन और आज का दिन मेरे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया। आज भी वो कनाडा में वेल सेटल्ड है, उसकी एक नई फैमिली है, वो बहुत अच्छी तरह जी रहे हैं, पर आज वो रेगुलर भगवान को याद करता है। ईश्वर का जीवन में आना ना आना कई बार हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि कई बार हम सोचते हैं भगवान तो जो कर्म कर रहे हैं ना, आज की जनरेशन जो है वो यही कहती है, अच्छा कर्म करो, सबके साथ अच्छे रहो, बस यही ठीक है, हम सही काम कर रहे हैं ना तो हम ठीक हैं। पर नहीं, जब तक बड़ों का साया नहीं होता है ना, कर्म भी सही नहीं होते हैं, क्योंकि वही हमें गाइड करते हैं। अगर हम मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि एक काम आपके लिए सही है, दूसरे के लिए गलत भी है, सही और गलत की पहचान उनकी प्रेजेंस से होती है। और ईश्वर का हमारे जीवन में रहना हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। पर क्वेश्चन फिर आता है कि भगवान है कौन? कौन है वो भगवान जिसको हम माता पिता बंधु सखा कहते हैं, और उसको हम जब याद करते हैं तो वो भूल क्यों जाता है, बाकी सब चीजें क्यों याद आती हैं? जब हम कह रहे हैं कि वो मेरा मम्मी है, माँ को कोई भूलता है क्या? पिता को कोई भूलता है क्या? बंधु सखा को कोई भूलता है क्या? परंतु उसको तो जब याद करने बैठते हैं तो शारीरिक माता पिता काम धंधे सब याद आते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा तब होता है जब हमें किसी का यथार्थ परिचय नहीं होता। कितना जानते हो आप भगवान को? जितना आप अपनी मम्मी को जानते हो, पापा को जानते हो, भाई को जानते हो, बहन को जानते हो, रिश्ते नाते संबंधी कामों को जानते हो, उतना भगवान को जानते हो? एग्जैक्टली नाम क्या है वो भी आप सबके लिए अलग अलग है, उसका रूप क्या है, देखने में कैसा है, रहता कहाँ है, क्या क्वालिटीज हैं, क्या कर्तव्य है, जानते हैं उसे? जब जान पहचान होती है ना तो याद करना सहज हो जाता है, जब लेना देना होता है तो याद करना सहज हो जाता है। परंतु जब जानते ही नहीं है किसी को और कहें उसको याद करो तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि किसको याद करें। आपको कहते हो भगवान को याद करो तो बुद्धि कहाँ जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, किसको याद करें? कृष्ण को याद करें, राम को याद करें, हनुमान को याद करें। आज क्या है, गणेश चतुर्थी है, तो आज के दिन तो गणेश जी को याद करेंगे, है ना? नवरात्रे हैं तो माँ को याद करेंगे। अलग 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 बुद्धि घूमती है, पर एग्जैक्टली भगवान जिसे वन कहते हैं वो है कौन? तो वो कौन है? भगवान के लिए कहते हैं, परमात्मा के लिए कहते हैं कि परमात्मा वो जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सब लोग माने, सब धर्म की आत्माएं माने, क्योंकि पिता वो जिसको सब बच्चे कहें कि वो मेरा पिता है। ऐसा ना हो कि हिंदू कहे कि मेरे पिता है और मुस्लिम कहे नहीं पिता है, मुस्लिम कहे पिता है और सिख कहे हमारे पिता नहीं है। तो पिता वो जिसको सब जाने, सब माने, परमात्मा वो जो सर्वोपरि है, परमात्मा वो जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, परमात्मा वो जो सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, जिससे ऊपर कोई नहीं है। कौन है वो जो सबसे टॉप मोस्ट है? कौन है, कौन है वो? जो जानते हैं थोड़ा वो तो कह रहे हैं शिव बाबा, लेकिन फिर भी अगर कोई और आकर कहे कि वो नहीं है, नहीं नहीं वो है, मान जाओगे? कहीं तो मान भी जाएंगे। पर क्यों वो है, वही क्यों है, और कोई क्यों नहीं है, इस पर पक्का निश्चय होना चाहिए। आप भी उनको समझा सको लॉजिकली क्यों है वही सर्वोच्च। आप देखो हिंदू धर्म के अंदर हम परमपिता परमात्मा को ज्योतिर्लिंग कहते हैं, कहते हैं ना ज्योतिर्लिंग। भारत देश में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, शिवलिंग सब जगह है। 12 ज्योतिर्लिंग है ना, सब जगह है। तो हिंदू धर्म के लोग उस परमपिता परमात्मा को ज्योतिर्लिंग के रूप में याद करते हैं। हिंदू धर्म में ही श्री राम को भी याद करते हैं, परंतु दिखाते हैं कि श्री राम जी ने भी, हाँ रामेश्वरम में दिखाते हैं ना, श्री राम उन पर आराधना कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो दिखाते हैं कि जब सागर क्रॉस करना था तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। रामेश्वरम में श्री राम उनको पूज रहे हैं, गोपेश्वरम में श्री कृष्ण, फिर देवी माँ क्या कहते हैं उन्हें, शिव शक्ति, शिव शक्ति का मंदिर है ना। तो कहते हैं परमात्मा शिव ने उनकी रचना की। आज गणेश चतुर्थी है तो श्री गणेश जी के पिता भी कौन है? तो हिंदू धर्म में भी सर्वोच्च जिसे कहते हैं वो कौन है? परमात्मा शिव है। श्री हनुमान जी को याद करते हैं, पर हनुमान जी श्री राम को याद कर रहे हो श्री राम, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सभी कहते हैं देवों के देव कौन है, महादेव है। और इस्लाम धर्म में जो मुसलमान भाई हैं वो भी क्या कहते हैं, परमात्मा कौन है, नूर है, लाइट है। हमने ज्योति कहा, ज्योतिर्लिंग कहा, उन्होंने नूर कहा, बात तो एक ही है ना, कंफ्यूजन कहां है, सिंपल है ना। तो हमने उसे नूर कह दिया या ज्योति कह दिया, बात तो एक है ना। फिर जो हमारे सिख भाई हैं, यहां बैठे हैं कोई, बैठे हैं कोई, परंतु गुरुद्वारे तो जाते होंगे ना, तो क्या कहते हैं परमात्मा के लिए, एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु करता पूरक निर्वैर निर्भय अजोनी, ये सब किसकी महिमा है, किसी इंसान की हो सकती है ना, हो सकती है किसी इंसान की, अकाल मूरत हो, काल जिसे खा ना सके, निर्वैर हो जिसका किसी से वैर ना हो, निर्भय हो, अभोक्ता हो, अकर्ता हो, अजन्मा हो, कोई मनुष्य ऐसा है जो भोगे ना सुख दुख, जो कर्मों में आए ना, है कोई ऐसा? सभी मनुष्य आत्माएं जो इस दुनिया में हैं वो दुख सुख में आती हैं, भोगती भी हैं, चाहे वो कोई भी हो। गुरु नानक साहब ने भी कहा एक ओंकार है, वो एक ओम की आकार का है, ओम यानी आत्मा की आकार का है। तो कोई नूर कह रहा है, कोई ज्योति कह रहा है, कोई प्रकाश कह रहा है, कोई एक ओंकार कह रहा है, बात तो एक ही है ना। और क्रिश्चियनिटी में ईसाई धर्म के लोग क्या कहते हैं, गॉड इज लाइट, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि गॉड क्या कैसा है, लाइट की तरह, आई एम द सन ऑफ गॉड। वहां पर भी कैंडल लाइट करते हैं ना, तो कोई लाइट कह रहा है, कोई नूर कह रहे हैं, कोई ज्योति कह रहे हैं। बौद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, वहां भी कहते हैं महात्मा बुद्ध को, महावीर स्वामी जी को भी एनलाइटमेंट हुई। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर धर्म की हर एक आत्मा उस नूर को, उस ज्योति को, उस लाइट को ही याद कर रही है। फिर कंफ्यूजन कहां है, ये माइंड क्यों कंफ्यूज हो रहा है, क्यों हो रहे हैं हम कंफ्यूज, क्यों? रीजन पता है, क्योंकि हम खुद को ये बॉडी समझ के बैठे हैं। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो परम आत्मा याद आता है। वंडरफुल बात है ये। अब आपको एक सबसे मजेदार बात यह है और खुशी की बात यह है कि परम पिता परमात्मा, परम आत्मा, सिंपल, सुप्रीम सोल, मैं कैसी हूं, सोल, सोल कैसी है, देखने में कैसी है, लाइट है। सुप्रीम सोल वो भी कैसा है, आपकी शक्ल किससे मिलती है, कैसे किसी के बच्चे को कहते हैं ना, आपकी शक्ल आपके पापा से मिलती है। हम सब आत्माओं की शक्ल हमारे परमात्मा से मिलती है। अब बस उससे मिलने के लिए थोड़ी सी कहते शक्ल तो गई, अब अक्ल भी मिल जाए तो हमारा ज्योति स्वरूप तो परमात्मा जैसा है, परंतु उस जैसे गुण आ जाएं, उस जैसी शक्तियां आ जाएं, उसके लिए उसका सानिध्य जरूरी है, उसके साथ बहुत जरूरी है। और वो साथ क्यों टूट गया, क्योंकि हम भगवान को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, और उसके कारण क्या हुआ, लिंक टूट गया। और अब हमें ये स्मृति आई कि जैसे मैं ज्योति हूं, वैसे मेरा पिता परम आत्मा भी, जैसे शरीर का पिता, दो चीजें होती है ना कंप्यूटर में भी, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, एक चीज दिखाई देती है, एक नहीं दिखाई देती है ना। कई लोग ऐसे हैं जो सामने आते हैं, कई लोग बैकग्राउंड में रहते हैं। हर काम में ऐसा होता है ना, कई लोग काम कर रहे होते पीछे, अभी यहां पर भी स्टेज पर भले मैं सबके सामने हूं पर इसके पीछे कितने लोग हैं, ये लाइट, ये साउंड दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कुछ चीजें आती है जो दिखाई नहीं देती, ऐसे ही शरीर, ह्यूमन बीइंग, बॉडी दिख रही है परंतु बॉडी को ऑपरेट करने वाली शक्ति आत्मा नहीं दिख रही। तो शरीर का पिता शरीर के जैसा, आत्मा का पिता आत्मा के जैसा। सिंपल, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो आत्मा का पिता आत्मा के जैसा है, यानी मेरा पिता परम पिता परमात्मा है जो बिल्कुल मेरे जैसा है। सिंपल है ना? तो क्या कंफ्यूजन है? अब जितना जितना हम अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकते जाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठते हैं, उतना उस परमात्मा के साथ लिंक जुटता जाता है। जैसे मंदिर में जाते हैं, पहले जूते चप्पल उतारते हैं, यही करते हैं। फिर क्या करते हैं पंडित जी? क्या करते हैं? टीका लगाते हैं। फिर आप उनको जो भी करना होता है, पूजा अर्चना करनी होती है या जो भी कम्युनिकेट करना होता है वो करते हैं। तो जूते चप्पल क्यों उतारते हैं? चमड़े की चीजें बाहर उतारते हैं, चमड़ी नहीं उतारते हैं। वो प्रतीक है। कितने भी नए जूते पहन के जाओगे ना तो भी अलाउ नहीं करेंगे, कहीं मिट्टी नहीं जाए। मिट्टी की बात नहीं है, ये शरीर भी तो मिट्टी है, ये तो चमड़ी है। इसको जब तक बाहर नहीं उतारोगे ना, इस कॉन्शियसनेस को बाहर नहीं उतारोगे, फिर अपने को आत्मा नहीं समझोगे, टिकोगे नहीं। टीका लगा लो पर टिकोगे नहीं, तो उसके साथ कनेक्शन जुटेगा नहीं, उसे पाओगे की नहीं। तो ये विधि है उसको याद भी करने की। तो समझना है पहली चीज, सोल कॉन्शियस होकर बैठना, फिर उसको याद करना। तो वो ऑटोमेटिकली याद आने भी लगेगी, सताने भी लगेगी। तो सबसे पहले अभी दो मिनट के लिए हम अपने सोल कॉन्शियस स्टेज में बैठते हैं और फील करेंगे आज सच्चे दिल से। बहुत प्रार्थना की, पूजा की, अर्चना की, भगवान को याद किया, अभी ऐसा करेंगे कि वो नेचुरल याद हो जाए, नेचुरल याद हो जाए। आपको चौकड़ी मारने की जरूरत नहीं है, आपको मुख से आरती गाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं स्पेसिफिक जगह जाने की भी जरूरत नहीं है। बस जहां बैठे हैं अपनी आत्मिक स्थिति में टिक जाएं और उसको याद करें, दिल से याद करें। अभी हम दिल से उस परम शक्ति का इसी जगह यहीं पर आह्वान करते हैं, आ जाओ। दिल से कहेंगे और फील करेंगे कि वो आ गया मेरे जीवन को चेंज करने के लिए। करेंगे सभी? चलो दो मिनट। ओम शांति। मन को दुनिया की सब बातों से, जीवन में चलते उतराव और चढ़ाव से कुछ पलों के लिए एकदम डिटैच, हल्का छोड़ दें। बॉडी को भी एकदम हल्का, लाइट। संपूर्ण ध्यान केंद्रित करेंगे दोनों आंखों से थोड़ा सा ऊपर, मस्तक के बिल्कुल बीच, एक चेतन ज्योति चमक रही है, लाइट। प्रकाश हूं मैं, फील करें ये देह परिवर्तनशील है,
बचपन में कुछ और थी और अब कुछ और है, पर मैं सदा से ज्योति हूं, लाइट हूं। फील करें आज स्वयं को। बहुत दिनों के बाद बाहर की बातों को छोड़कर मैं खुद से मिली हूं और महसूस करें अब तक मैंने कई बार इस जन्म में भगवान को बुलाया, कई मंदिरों में गई, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघरों में गई, पर मेरे अंदर की वो इच्छा खत्म ही नहीं हुई। मेरे भीतर की कामनाएं कभी पूर्ण ही नहीं हुई। जब जब व्रत रखा, उपवास रखा, कुछ पलों के लिए शांति मिली, पर फिर जीवन वही का वही था। मैंने कई बार अलग अलग तरीकों से परमात्मा को अलग अलग रूपों में याद किया, पर आज भी अंदर से मैं खाली, पता नहीं क्यों महसूस करते हो। फील करें और आज सच्चे दिल से, मन से, बिना किसी वहम के, अहम के, मन ही मन से पुकारे, हे मेरे परमात्मा आ जाओ। आज मेरे अंतर के सब दुख दूर कर दो, मेरे जीवन के सब दर्द खत्म कर दो, मन की अशांति को, दुविधाओं को, प्रॉब्लम्स को सदा काल के लिए समाप्त कर दो और महसूस करें अपने बिल्कुल ऊपर परम ज्योति शिव बाबा, ज्योति प्रकाश सूर्य के समान, अपनी सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों के साथ मेरे सामने आ गए हैं। महसूस करें उनसे निकलती किरणें नहीं, जिसे परमात्मा का हाथ है। महसूस करें इसे अपने सिर पर, जिसे खुद भगवान मुझे कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम चिंता नहीं करो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, हर वक्त हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ हूं। फील करें ऑटोमेटिक परमात्मा का सानिध्य, उनकी ये शांति की किरणें मेरे भीतर की अशांति को खत्म कर रही है, मेरे अंतर के दुखों को दूर कर रही है। अंतर तक सुख शांति आनंद से भरती जा रही हूं। जीवन में सदा काल की प्राप्तियां हो रही हैं। स्वयं सदाशिव मेरा हो गया है। ओम शांति। बहुत सहज है, बस दिल से बुलाना है। ये समझना है कि वो जैसे हम बॉडी के अंदर हैं, वैसे उसकी देह नहीं है। वो जन्म मृत्यु से न्यारा है, परंतु बिल्कुल वैसा है जैसे हम हैं, जो हमारा सत्य स्वरूप है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या कहती है माँ? भगवान की कृपा से बच्चा पैदा हुआ है। विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट दिस चाइल्ड। भगवान ने दिया है। एक मिनट भी नहीं होता किसका बच्चा हो जाता है? मेरा बच्चा है। बच्चे को भी पक्का कर दिया जाता है। बच्चा बड़ा होता है ना, तो सब सिखाया जाता है। आंखें का है, मुंह का है, नाक का है, हाथ का है, बॉडी का है। आइडेंटिटी आपकी ये है, ये आप हो, पक्का हो जाता है। ये अस्तित्व, मेरे मम्मी ये है, पापा ये, याद करा दिया जाता है। व्हाट इज योर फादर्स नेम, ब्रदर्स नेम, मदर्स नेम, सब याद करा दिया जाता है। वो जो हमारी पहली आइडेंटिटी थी ना, वो भूल जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। इस दुनिया में रहते हैं इस अस्तित्व के साथ, परंतु परमात्मा जो सदा काल का अस्तित्व हमें बताते हैं कि तुम किसकी संतान हो, ईश्वर की संतान, ये स्मृति आते ही अंदर शक्ति आती है। बॉडी के नाते आप कहीं भी जन्म लिया, किसी भी धर्म में जन्म लिया, किसी कहीं पर भी कैसी भी आपकी परिस्थितियां होंगी, लेकिन जिस पल मनुष्य आत्मा को ये स्मृति आ गई कि मैं खुद भगवान की संतान हूं, तो ये जो देहिक हद की बातें हैं, लिमिटेशंस जिसे कहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। आपके अंदर की अनलिमिटेड पावर जनरेट हो जाती है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, जी तो रहे हैं ना हम, आत्मा नहीं भी पता है तो क्या है, परमात्मा नहीं भी पता है तो क्या है? ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना लाइफ में, जैसे दुनिया में समझो आपका आधार कार्ड खो गया, प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? कितनी प्रॉब्लम आएगी, हर जगह चाहिए। आजकल तो यही है ना, आइडेंटिटी नहीं है तो फिर क्या है? फिर कुछ भी नहीं। आपको कहीं कुछ काम करने लगोगे, अड़चने आने लग जाएंगी, कहेंगे पहले आधार कार्ड बनाओ, है ना। अब इस बिना आधार के मैं जिंदगी के अंदर, कहते हैं दुनिया भगवान ने रची, क्रिएटर है वो, और जैसे कि एक फिल्म है और जो एक्टर है बिना डायरेक्टर से कनेक्ट हुए एक्ट कर रहा है, रोल को भूल जाएगा, हो सकता है एक्शन की जगह रिएक्शन कर रहा है। और यही हम कर रहे हैं एक्चुअली आजकल, अपने एक्शन पर ध्यान नहीं है, मुझे क्या करना है, दूसरा जैसा कर रहा है वैसा कर रहे हैं। क्यों? डायरेक्टर के साथ कनेक्शन नहीं है, भूल गए हैं उसे। और वो कनेक्शन प्रॉपर ना होने के कारण, प्रॉपर क्यों, देव आत्माएं, अब ये समझने की बात है, क्या डिफरेंस है परमात्मा, देव आत्मा, धर्म आत्मा, पुण्य आत्मा। आत्मा इस बॉडी के साथ, इस बॉडी के साथ कोई भी अच्छा या बुरा कर्म करती है, पाप कर्म करती है तो क्या कहते हैं, पापात्मा। पुण्य का कर्म करती है तो क्या कहते हैं? पुण्यात्मा। पुण्य शरीर नहीं कहा, याद रखें, पुण्य काम कौन करा रही है? आत्मा। कोई भी धर्म की स्थापना करती है तो वो क्या कहलाती है? धर्मात्मा। महान कार्य करती है तो महान आत्मा। इंपॉर्टेंट बात है, अगर आत्मा में डिवाइन वर्च्यूज है, डिविनिटी है, दैवी गुण है, तो क्या कहेंगे? देवात्मा। अभी समझना है, आत्मा इस शरीर के साथ अच्छे से अच्छा काम करके पुण्य आत्मा बन सकती है, धर्मात्मा बन सकती है, देवात्मा भी बन सकती है। जैसे एक बच्चा अच्छे ओहदा प्राप्त कर सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, अपना पिता बन सकता है? बन सकता है? नहीं बन सकता। ऐसे ही मनुष्य आत्माएं अपने कर्मों के प्रमाण पुण्य आत्मा बन सकती है, धर्म आत्मा बन सकती है, देव आत्मा बन सकती है, पर परमात्मा नहीं बन सकती। परमात्मा हम सभी आत्माओं का, चाहे वो देव आत्माएं हैं, चाहे वो धर्म आत्माएं हैं, चाहे वो पुण्य आत्माएं हैं, हम सबका पिता एक है। आत्माएं वैरायटी हैं, पर फादर एक है, और वो सब आत्माओं का, सर्व आत्माओं का पिता एक परम आत्मा है, जो सदा ज्योति है, लाइट है, कोई शरीरधारी नहीं है, उसकी अपनी बॉडी नहीं है, बॉडीलेस है वो। कई बारी आप भी कंफ्यूज होते होंगे, यहां आने से पहले हम भी कंफ्यूज होते थे, शिव और शंकर में अंतर नहीं आता है, हमें सोचते हैं वही शिव है वही शंकर है, है ऐसा कंफ्यूजन? है ना, किस किस को कंफ्यूजन है? है, कहीं का कंफ्यूजन हो, कहीं हाथ खड़ा कर रहे हैं, कहीं नहीं भी कर रहे हैं, हाँ एक एक करके खड़ा कर रहे हैं, सोचते सेम है। अब आपसे मैं पूछती हूं, खुद ही बताएं, शास्त्रों में तो लिखा ही है, वो अलग बात है, सोमवार के दिन मंदिर में जाते हैं, किस पर जल चढ़ाते हैं? अकधतुरा या कुछ, शिवलिंग पर। अगर आप शंकर जी की मूर्ति पर चढ़ाओ तो अलाउ करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, सेम है। शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि कहते हैं, सेम है, बोल देना चाहिए ना, है ना, नहीं कहते हैं ना, हमारी अपनी लैंग्वेज है। शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते हैं, कभी भी नहीं कहते, हमारी अपनी लैंग्वेज है। शिव महापुराण में लिखा है, ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः, शंकर देवताएं नमः, शिव परमात्माएं नमः। शंकर देवता है, परमात्मा नहीं है। वैसे भी शंकर जी को क्या कहते हैं? विनाश का प्रतीक। और शिव शब्द का ही अर्थ है कल्याणकारी, शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी, सदा कल्याण करने वाला, विनाशकारी नहीं है। और इसीलिए सोमवार को व्रत रखते हो ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, ऐसा ही है ना, तभी तो पूजा करते हैं। डिस्ट्रक्टर जो है उसकी थोड़ा पूजा करेंगे कि हमारे जीवन में कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाए, सिंपल है ना। शिवरात्रि कहते हैं ना, शंकर रात्रि नहीं कहते ना, क्यों नहीं कहते अगर सेम है तो? तो बहुत सिंपल बात है, उनका आकार दिखाते हैं, उनको निराकार दिखाते हैं। शिवलिंग न स्त्रीलिंग है न पुरलिंग है, सदा ज्योतिर्लिंग है। आत्मा फीमेल बॉडी लेती है स्त्रीलिंग, मेल बॉडी लेती है पुरलिंग, परंतु बॉडीलेस है तो ज्योतिर्लिंग है, ज्योति है, लाइट है, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, खुद ही हमने कंफ्यूजन क्रिएट की है। तो परमपिता परमात्मा हम कभी किसी भी मनुष्य आत्मा की, यहां पर भी हम उस परम ज्योति को ही याद करते हैं, फरियाद नहीं करते, याद करते हैं, दिल से याद करते हैं उस पिता को। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कहाँ याद करते हैं? अभी जब आइडेंटिटी पता चल जाती है तो याद करना सहज हो जाएगा आपके लिए। नाम है शिव, रूप है ज्योति, पता चल गया, क्लियर इमेज आ गई। नाम है शिव, शिव का अर्थ कल्याणकारी, शिव का अर्थ बिंदी भी है। पुराने जमाने में हमारे दादाजी कहते थे कि जब अकाउंट्स क्लोजिंग होती थी ना तो बिंदु लगाते थे और कहते थे शिव। तो नाम है शिव, रूप है ज्योति, रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं? जिन्होंने कोर्स किया वो तो बता रहे हैं, परंतु रहते कहाँ हैं? कंफ्यूजन बहुत है। कई लोग कहते भगवान कहाँ है? सब जगह है, सब जगह, कण कण में है, पत्थर में है, टिक्कर में, सब जगह है ना, ऐसा कहते हैं ना। कहीं कहते आत्मा ही परमात्मा है, कहीं मानते ही नहीं है, ऐसा है ना, बहुत कंफ्यूजन है। कहीं कहते कर्म ही भगवान है, कहीं कहते मंदिरों में भगवान है, कहीं कहते मस्जिदों में भगवान है। अब जब याद कर रहे हैं तो कहाँ याद करें? पता होना चाहिए ना, रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं, पक्का है ना। फिर मंदिर क्यों जाते हैं हम? फिर तीर्थ करते हैं, करते हैं ना, इतनी ऊंची ऊंची चढ़ाइयां चढ़ते हैं, जब ऊपर रह कहाँ रहते हैं? वो पहाड़ पर तो नहीं रहते। हाँ जी, ज्योतिर्लिंग होता है वहां पर, बाहर मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, वहां भगवान है ना। और फिर वहां जाकर भी क्या करते हैं पता, आरतियों में कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दर्शन दे दो, बुला रहे हैं वहां जाकर भी उसे, दर्शन दे दो, ऐसे ही कर रहे हैं ना। एक और वंडरफुल बात बताती हूँ, कोई भी चीज कहीं है, कहीं पर भी है, वहां उसके गुण भी होंगे। किसी चीज में नमक डालो तो नमकीन होगा कि नहीं होगा, चीनी डालो तो मीठा होगा कि नहीं होगा, कहीं पर भगवान है। समझो कहते हैं कण कण में है, या मंदिर में है, या मस्जिद में है, या मेरे अंदर है, आप सब में है ना। कहीं कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, अगर कहीं भगवान है तो वहां उसके गुण भी तो होंगे, है ना, होंगे ना। पर आजकल तो इंसान इंसान को कितना दुख देता है, प्रकृति भी दुख देती है, कई लोग प्रकृति को भी भगवान मानते हैं, प्रकृति भी दुख देती है, ये प्रकृति भी दुख देती है, देती है कि नहीं देती। और भगवान तो दुख हरता सुख करता है, भगवान तो शांति देने वाला है, सुख देने वाला है, ऐसा ही है ना। फिर वो जहां है वहां सुख क्यों नहीं है? वो इस दुनिया में है। एक बार एक व्यक्ति को कंफ्यूजन थी, वो ना एक नाई के पास बैठा था, बाल बाल कटवा रहा था, सामने एक भिखारी आया और भिखारी ने कहा कि भाई मुझे कुछ दे दो, उसके बाल बाल भी बिखरे हुए थे। तो जो नाई काट रहा था ना, वो कहता कि देखो भगवान ना कुछ भी नहीं चीज है, अगर भगवान इस दुनिया में होता तो इतने लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, तड़प रहे हैं, कई लोग अमीर होते जा रहे हैं, कई लोग गरीब होते जा रहे हैं, भगवान के होते तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो ये भगवान वगान कुछ नहीं है। वो जो कटवा रहा था ना, उस समय तो कटवाता रहा, उसने कहा अभी तो कुछ बोलो नहीं, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। जब कटवा लिया, फिर सामने बाहर गया तो वो भिखारी बैठे हुए थे, लेकिन मुझे लगता है इस पूरे एरिया में ना नाई की कोई दुकान नहीं है। तो उसने कहा भाई अभी तो कटवा कर गए हो, कह रहे हो नाई की दुकान नहीं है, तो अभी अभी तो कटवाया आपने और आप ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कहते अगर नाई की दुकान होती ना तो इतने सारे देखो भिखारियों के बाल देखो कितने खराब हैं, कितने बिखरे हुए हैं, इनके ऐसे थोड़ी ना होते। समझ गया ऐसा नहीं है, भगवान नहीं है भाई, वो आएंगे नहीं,
बैठेंगे नहीं तो कटवाएंगे कैसे? भगवान के पास आप जाओगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, उसको याद नहीं करोगे तो उसे प्राप्ति कैसे करोगे? भगवान को भी किसी के पास आप जाओगे नहीं, मम्मी के पास जाओगे नहीं, पापा को कुछ बताओगे नहीं तो वो कैसे आपको बताएंगे? वैसे ईश्वर हमारे मन की बात को भी जानता है, जो हम नहीं जानते वो भी जानता है, पर फिर भी कहते हैं एक कदम आपकी हिम्मत का तो हजार कदम उसके, परंतु एक स्टेप तो मुझे बढ़ाना पड़ता है ना। अगर आप एक कदम भी नहीं उठाओगे, ये जो यहां आए हो ये है आपका एक कदम, और इसके बदले में आपको जो हजार कदम मदद के मिलने वाले हैं वो आपने सोचे भी नहीं है। हजार भुजाओं वाला भगवान आपके साथ है, हर पल साथ है, परंतु हम यथार्थ रीति याद नहीं करते। विधियां बहुत सारी अपनाते हैं परंतु उसको यथार्थ याद नहीं करते। अभी समझना है भगवान इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए उसे कहते हैं ऊपर वाला जाने, कभी कहते हैं नीचे वाला जाने। क्या कहते हैं? अपने आप बुद्धि ऊपर जाती है, सिखाया नहीं है, क्योंकि आत्मा कहीं ना कहीं सूक्ष्म रीति जानती है कि मेरा पिता ऊपर रहता है। हाथ ऊपर उठते हैं अपने आप, नीचे नहीं जाते हैं। कहते हैं ना आ जाओ दर्शन दे दो, इसका मतलब वो यहां नहीं है, यहां नहीं है, तभी तो बुला रहे हैं। जो हमारे सामने है, जो हमारे अंदर है, उसको बुलाते हैं क्या? अगर बुला रहे हो तो यानी यहां नहीं है। हम अंदर से जानते हैं, आत्मा जानती है, मैं जो बातें आपको बता रही हूं एक्चुअली अंदर ही अंदर आप सब जानते हो, पर ये जो अंदर की महसूसता है, ये जो सोल कॉन्शियस स्टेज है, यहां जो भी ज्ञान आपको दिया जा रहा है, चाहे परमात्मा का है चाहे आत्मा का है, ये कोई नया नहीं है। बस वही ज्ञान जो आपके अंदर है उसको विस्तार पूर्वक बताया जाता है। जैसे स्कूल में भी जो आपको ज्ञान दिया जाता है वो आपके आसपास होता है, आपके आसपास होता है, उस चीज को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाता है। तो परमात्मा का ये ज्ञान आप सब जानते हो, आत्मा जानती है, और आप सभी आत्माएं हैं परमात्मा की संतान। जितना जानते हो, जितना पहचानते हो, जितना उसके साथ जुड़ते हो, उतना प्राप्ति होती है। यहां नंबर बन जाते हैं। जैसे स्कूल में सब बच्चे आते हैं, टीचर वही है, पढ़ने वाले सब स्टूडेंट हैं, पर ग्रैस्प करने की शक्ति क्षमता सबकी अलग अलग होती है। जितना पढ़ते हो, जितना प्रैक्टिस में लाते हो, जितना अभ्यास करते हो, उतना आप आगे बढ़ जाते हो। और कुछ भी नहीं है, यहां पर भी आप सब बैठे हो, जितना आप अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज का अभ्यास करोगे, जितना परमात्मा को यथार्थ रूप से, अब तक हम यथार्थ रूप से याद नहीं करते थे इसलिए प्राप्ति नहीं होती थी। समझो मुझे काम इनसे है, मैं बात इनसे कर रही हूं, कैसे मिलेगी मुझे चीज? भगवान को याद तो कह रहे हैं, ईश्वर तो कह रहे हैं, परंतु बुद्धि में तो कोई देव आत्मा है, कोई धर्म आत्मा है, कोई मनुष्य आत्मा है, कोई कण कण है, कोई पत्थर है, तो प्राप्ति कैसे होगी? आप ही सोचो ना, पॉसिबल ही नहीं है। काम किसी और से हो, जाए हम किसी और से, लेनी मुझे कार है, जा रही हूं मैं किराने की दुकान पे, मिलेगी? मिलेगी नहीं मिल सकती। तो परमात्मा को याद करने की जब यथार्थ विधि आ जाती है कि मुझे चमड़े की चीजें बाहर नहीं करनी, बॉडी कॉन्शियसनेस को भुलाना है, मुझे अपने को आत्मिक स्थिति में टिकाना है, और फिर उस परम पिता परमात्मा से शक्ति लेनी है, यही सिंपल तरीका है। तो अब से मैं आत्मा, मेरे पिता परमात्मा शिव, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम, आप भी कह सकते हो। बाबा मतलब कोई बॉडी वाले बाबा नहीं है यहां, कोई हम किसी देहधारी को परमात्मा नहीं मान रहे। जैसे आप घर में अपने फादर को बाबा भी कहते हैं, डैडी भी कहते हैं, पापा भी कहते हैं, हम भी उन्हें प्यार से बाबा कहते हैं, और दिल से कहते हैं कि वो मेरे हैं। किसके हैं? इंडिविजुअली, ब्रह्मा कुमारियों के नहीं है ना, ब्रह्मा कुमारियों के, कहीं कोई कहते हैं वो ब्रह्मा कुमारियों के बाबा है। भगवान पर आप हमारा कॉपीराइट नहीं है, वो आपके भी पिता हैं, आपके भी वो शिव बाबा हैं, आपके वो भी पिता हैं। जब जब दिल से कहोगे, क्या कहोगे? मेरे बाबा, बोलो मेरे साथ, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ मेरी मदद करो, तो आ जाएगा। मेरे जीवन का अनुभव है, कई बारी, छोटी हो या बड़ी, ये मत वेट करो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको याद करें। छोटी छोटी कोई चीज, एक व्यक्ति है, उनके घर में कोई है नहीं, अकेले रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो आप मानोगे, वो कहते हैं मैं ना भूल जाता हूँ, अकेला रहता हूँ ना और एज्ड हो गई है, कहते मैं छोटी चीज भूल जाता हूँ, मैं बाबा को कहता हूँ कि बाबा मेरी वो चीज मिल नहीं रही, और कहते मुझे फोन करके बताते हैं अपने अनुभव, कहते वो चीज मुझे तुरंत मिल जाती है या मेरी बुद्धि में आता, मैंने वहां रखी है। ये देखो छोटी बातें हैं। एक माता, गांव की माता, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, कोई एजुकेटेड या एजुकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, एज से भी कोई लेना देना नहीं है, एक माता, गांव की माता, उसने मुझे अपना अनुभव सुनाया, बहुत अच्छा अनुभव। कहती है कि मेरे घर के अंदर ना उसके पति ने शरीर छोड़ दिया, गांव की माता, गांव में रहती थी, उसके पति ने शरीर छोड़ दिया और गांव में खेत का काम करती थी, तो खेतों में जाती थी। उसने कहा कि मैं एक बार खेतों में गई और रोज अपनी चाबी अपनी फ्रेंड को दे जाती थी कि भाई देख लेना कि खेतों में मेरी चाबी ना खो जाए, तो वो देकर चली जाती थी। एक दिन उसकी फ्रेंड के दिमाग में आया, वो जो पड़ोस में रहती थी, अकेली रहती है घर में, कुछ ना कुछ होगा जरूर, तो वो गई खेत में और पीछे से उसने दरवाजा खोल लिया घर का देखने के लिए, खोला और तुरंत बंद कर दिया। उसका अपना अनुभव है, उस बाद में उसने बताया ना उसे, तो उसके बाद जब वो शाम को खेतों से लौटी ना, तो उसने कहा कि तू तो बड़ी झूठी है, तू तो बहुत झूठ बोलती है। मैंने क्या झूठ बोला है? कहती घर में एक बुड्ढे को बिठाकर जाती है रोज ताला मारकर। कहती मेरे घर में तो कोई भी नहीं है। कहती नहीं, चल खोलते हैं। तो उसको तब पता चला, इसने खोला दरवाजा, दरवाजा खोला, कोई नहीं था। वो हम पीछे ब्रह्मा बाबा की तस्वीर है ना, और परमात्मा ज्योति तो दिखाई नहीं देगा। कहते वहां फोटो थी, बाबा को याद करती थी, कहते यही बुड्ढा यहाँ बैठा था। अब उसको तो ना पता ब्रह्मा बाबा है या कुछ है, कहते ये यहाँ बैठा था, मैंने देखा था। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, वो जो बुजुर्ग माता थी जो जाती थी, कहती है तुझे क्या लगता है तेरे हवाले मैं इस घर को छोड़कर जाती थी, मैं चाबी तुझे दे जाती थी कि चाबी ना खो जाए, लेकिन मैं बाबा को कह के जाती थी कि बाबा मेरे घर की रक्षा करना। और ये एक अनुभव नहीं है, स्पेशली माताओं के, भाइयों के भी बहुत हैं, पर माताओं के मेरे सामने इतने अनुभव आते हैं। एक माँ का ना, फौरन की माता, उसका बच्चा पैदा होते मर गया था। तो हम कहते हैं, जब आप कहते हो भगवान को तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सका तुम ही हो, तुम्हारा बच्चा भी है भगवान। तो कहते हैं मैंने तब से भगवान को अपना बच्चा बना लिया है। उसका अनुभव है, कहती एक बारी जब वो काफी एज की हो गई, तो उसके घर में कोई था नहीं, तो अकेली रहती थी। तो कहती है मैंने इतनी तबीयत खराब हो गई कि मेरे से उठा भी नहीं जाता था, मतलब पानी का गिलास भी उठाया नहीं जा रहा था। उसका अपना अनुभव है, कहती है मैंने बाबा को कहा कि मैं तुझे अपना बेटा मानती हूं ना, तो तू मुझे आज पानी पिला दे। तो उस माँ का अनुभव है, उसने मुझे कहा कि मुझे पता ही नहीं चला, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी प्यास बुझ गई, ऐसा तो नहीं कि पानी चलकर आया, पर उसने कहा कि मुझे तुरंत ऐसा फील हुआ कि मेरी प्यास बुझ गई, मुझे मेरी प्यास ही खत्म हो गई। तो ये एक ऐसे ऐसे अनुभव है, और एक नहीं अनेक अनुभव है। परंतु इम्पोर्टेंट क्या है,
सच्चे दिल से उसको कहना कि तू मेरा है। क्या कहना? तू मेरा बाबा है, किसी और का नहीं है, मेरा है। वंडरफुल बात है कि हमें ये रुमाल मेरा यहां छूट जाए ना तो भी मैं कहूंगी मेरा रुमाल। कहते हैं ना, रुमाल याद आता है, भगवान याद नहीं आता है। क्यों याद नहीं आता था? इसको भी मैं जानती हूं, उसका रूप देखा है, रंग देखा है, तो मैं कहूंगी वो पिंक कलर का है, वो ऐसा ऐसा है, तो याद आता है। जब तक जान पहचान नहीं होती तब तक याद नहीं आती। अब पहचान हो गई आपको, अब बस दिल से कहना, चलते फिरते कहना, मेरे बाबा आ जाओ और देखो हजार भुजाओं वाला भगवान आपकी कैसे मदद करता है। रोज सुबह उठकर बस एक काम करना, गुड मॉर्निंग बाबा। कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, मुंह से भी मत बोलना, मन में कह देना गुड मॉर्निंग बाबा। रात को कहना गुड नाइट शिव बाबा। शिव बाबा कह दो, भगवान कह दो, लेकिन भगवान ईश्वर कहने से थोड़ा दूरी हो जाती है। बाबा बाबा कह देते हैं तो मुंह से नहीं बोलो, अंदर बोलो, क्योंकि ये रिलेशन सोल और सुप्रीम सोल का है, दिखावे का नहीं है। और फिर देखो अपनी लाइफ में जादू, वो जो हम कहते हैं ना असत्य से सत्य की ओर ले चलो, प्रैक्टिकल में आपकी लाइफ से अंधकार दूर हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, अपने आप पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। बस करके देखो। सानिध्य, संग बहुत मैटर करता है, इसे कहते सत्संग में जाओ। सच्चा संग सत पिता का संग है, कहते गॉड इज ट्रुथ। दो गुण है जो भगवान के साथ लगते हैं, गॉड इज ट्रुथ और गॉड इज लव। दो ही चीजें चाहिए, सच्चा दिल चाहिए, प्यार से भगवान को याद करो, अंदर सच्चाई सफाई रखो, बस। फिर देखो आपकी लाइफ से चाहे कोई व्यक्ति प्रॉब्लम कर रहा है, चाहे कोई वस्तु प्रॉब्लम कर रही है, चाहे परिस्थितियां प्रॉब्लम कर रही है, सब नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन जब सुप्रीम पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाएगी तो मनुष्य आत्मा की क्या शक्ति है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, जब खुद सर्वशक्तिवान आपके साथ है। तो बस एक सेकेंड में कहना आ जाओ। क्या बोलेंगे? मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ मेरी मदद करो। बस पक्का कर लो इसे और फिर देखो चमत्कार। और दिल से कहना, ठीक है, टाइम की लिमिट है, इसलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।